आरव और अयान गौरवी के रूम में थे, जहां अयान उनका चेकअप कर रहा था। इस बीच आयु का कॉल आया और उसने तबियत खराब होने का बोलकर हॉस्पिटल आने से मना किया था। कॉल कट होते ही आरव ने अयान की तरफ घूर कर देखा और कहा, ये वही है ना जिसने दादी की सर्जरी की थी? अयान ने हाँ में सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो आरव से आयु के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, दादी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। कई बार सर्जरी के बाद होश आने में टाइम लगता है, कल सुबह या दोपहर तक इन्हें होश आ जाएगा। आरव ने अयान की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने जवाब में कहा, अच्छा तो उसका नाम आयु है, पर मुझे तो कुछ और ही याद था। उसका नाम आयुष्का है, अब प्लीज आप उससे अपना ध्यान हटाकर दादी पर फोकस करेंगे? अयान ने चिढ़कर कहा, मेरा ध्यान दादी पर ही है, तुमने बताया ना इन्हें होश आने में टाइम लगेगा, बाकी इनकी हेल्थ ठीक है तो मुझे टेंशन देने की क्या ज़रूरत है? वैसे कॉल पर उसने बताया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है उसे? आरव अभी भी आयु की बात कर रहा था। अयान ने उसकी तरफ सिर हिलाया और बिना जवाब दिए वहां से जाने लगा। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया। यू कांट इग्नोर मी, जो पूछा है उसका जवाब दो, आरव ने सख्त लहजे में कहा। ओके फाइन, कहकर अयान ने अपना हाथ आरव से अलग कर दिया। उसके पास आरव को आयु के बारे में बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो गौरवी जी के पास लगी टेबल पर बैठते हुए बोला, उसकी एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री है, मैं आपको डिटेल में सब नहीं बता सकता। इन शॉर्ट यही बता सकता हूँ कि उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी की तुलना में थोड़ी वीक है। अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करती है या स्ट्रेस में रहती है तो बीमार पड़ जाती है। खुद को मेनटेन करने के लिए उसे रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है। अच्छा, तो सच में वो एक बीमार डॉक्टर है? अयान से पूरी बात जानने के बाद आरव ने प्रतिक्रिया दी, प्लीज़ आप उसे बीमार डॉक्टर कहना बंद करो, और उसके सामने तो बिल्कुल मत कहना, उसे नहीं अच्छा लगता कि कोई उसे वीक समझे, अयान ने समझाया। आयु के साथ रहते हुए वो उसे बहुत अच्छे से जानने लगा था, ऐसे में वो नहीं चाहता था कि अनजाने में ही सही पर आरव आयु को हर्ट करे। ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा मुझे समझ नहीं आता, कभी उसकी ओवर केयर करते हो तो कभी उसके साथ रूड हो जाते हो, अगर वो वीक है तो तुम्हें उसे इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए, आरव बोला। इमोशनल सपोर्ट की बातें कर भी कौन रहा है, खैर छोड़िए, वो आज रात नहीं आ रही है तो मुझे उसकी इमरजेंसी लीव का कुछ करना होगा, आप दादी को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अयान टेबल से उठते हुए बोला। जाने से पहले उसने आरव को सब समझा दिया। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। अयान वहां से चला गया। फिर आरव ने एक नज़र गौरवी जी की तरफ देखा और उनसे कहा, दादी भले ही वो एक बीमार डॉक्टर हो लेकिन अच्छी डॉक्टर है, आपकी सर्जरी काफ़ी सही से की है उसने, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता लेकिन यहाँ सब कह रहे हैं कि इस सर्जरी के बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आरव वहाँ गौरवी जी से बातें कर रहा था। पूरी रात वहाँ बिताने के लिए उसने अपने लिए काफ़ी सारी कॉफ़ी और खाने पीने का सामान ऑर्डर कर लिया। अगली सुबह आरव थक गया तो वो गौरवी जी के पास मौजूद बेड पर सो रहा था। वहीं गौरवी जी का ध्यान रखने के लिए अब कबीर था। आज साक्षी को भी डिस्चार्ज मिल रहा था, इसलिए अयान डिस्चार्ज से पहले उसकी ज़रूरी टेस्ट कर रहा था। टेस्ट रिपोर्ट देखते हुए अयान ने साक्षी से कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कोशिश कीजिएगा कुछ दिन मेंटल स्ट्रेस ना लें। जी डॉक्टर, साक्षी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। उसके थैंक यू कहने पर अयान ने साक्षी के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे की सादगी देखकर एक पल के लिए अयान उसमें खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर वेलकम कहा। आगे आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कॉल करके हॉस्पिटल में पूछ सकती हैं, जाने से पहले अयान ने कहा। फिर उसे कुछ ख्याल आया तो वो रुककर साक्षी से बोला, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर? साक्षी ने हैरानी से पूछा। वही जिसने आपका एक्सीडेंट किया था, आप बेहोश थी लेकिन वो इस एटीट्यूड के साथ इस हॉस्पिटल में एंटर हुई थी जैसे उसने आपको यहाँ लाकर कोई एहसान किया हो, अयान ने बताया। माहिरा के नाम से ही उसे चिढ़ थी, वो अच्छे से जानता था वो कौन है और क्या काम करती है, इस वजह से उसे वो और ज़्यादा नापसंद थी। उसकी बात सुनकर साक्षी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी, वो भी पुलिस कंप्लेन करना चाहती थी लेकिन आरव की वजह से उसने कुछ नहीं किया। एक्चुअली आरव मेरा फ्रेंड है, उसने कहा कि उस लड़की ने ये जानबूझकर नहीं किया तो मैंने भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अगर मैं पुलिस कंप्लेन करती तो बेवजह सीन क्रिएट हो जाता, साक्षी ने अपनी तरफ से क्लियर किया। एज योर चॉइस, कहकर अयान वहां से बाहर चला गया। इस मामले को लेकर अयान ने साक्षी से ज़्यादा बहस नहीं थी, वो अच्छे से जानता था साक्षी कौन है और उसकी एक पुलिस कंप्लेन करने पर कौन सा सीन क्रिएट हो सकता था। पूरी रात फाइट क्लब में बिताने के बाद आयु अभी सुबह फ्रेश होने के लिए अपने घर पर पहुंची। तारा जी ने इस बार आयु की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये उसका रोज का हो गया था, लेकिन रुद्र को उसकी हेल्थ के बारे में पता चल गया था, वो आयु के ही आने का इंतजार कर रहा था। घर आते ही आयु सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी लेकिन जैसे ही उसने रुद्र को देखा उसके कदम वहीं रुक गए। रुद्र को देखकर आयु उसके पास जाकर बोली, काफी लेट हो गया है, आज आप ऑफिस नहीं गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाई?
हाँ लेट तो काफी हो गई है आयु,
तुम्हें भी अब तक घर आ जाना चाहिए था। अयान से बात हुई तो पता चला कि तुम कल रात तुम हॉस्पिटल में नहीं थी, रुद्र ने सख्त लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर आयु के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने धीमी आवाज में कहा, प्लीज मॉम को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मॉम से कुछ नहीं होने वाला। लगता है इस बार डैड से बात करनी होगी, तभी सब सही होगा, रुद्र ने जवाब दिया। प्लीज नहीं भाई, जय जी के नाम से ही आयु के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदे थी। आप डैड को कहेंगे तो वो मेरी इंटर्नशिप छुड़वा देंगे, मुझे घर में बैठकर नहीं रहना। हाँ, बस यही सोचकर तुमसे बात करने आ गया। तुम काफी थकी हुई भी लग रही हो, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं, रुद्र ने आयु के चेहरे को देखकर कहा। पूरी रात सोने के बावजूद भी उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही धम से बेड पर बैठ गई और परेशान स्वर में बोली, उस अयान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या जरूरत थी भाई को सब कुछ बताने की? कहीं उसने मेरी हेल्थ के बारे में भी उन्हें नहीं बता दिया ना? हे भगवान, मैं कैसे मुसीबत में फंस गई हूँ। आयु को अयान पर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को रिलैक्स किया और तुरंत अयान को कॉल किया। अयान ने उसका कॉल रिसीव करते ही पूछा, चलो बताओ क्या हुआ था, तुम्हें अब ठीक तो लग रहा है ना? चाहे तो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा सकती हो, मैं डॉक्टर माथुर को बोल दूंगा। उसकी बातें सुनकर आयु ने आईज रोल की और फिर सख्त आवाज में कहा, अयान तुम भाई से मिले थे ना, मतलब रुद्र ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? अयान ने जवाब दिया, हद है यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अगर उन्होंने सब कुछ डैड को बता दिया तो वो फिर से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, दिन रात मेरे पीछे हेल्थ का रोना लेकर घूमते रहेंगे। तुम क्यों मेरी फ्रीडम के दुश्मन बने हुए हो? ऊपर से तुमने उन्हें ये भी बता दिया कि मैं कल रात को हॉस्पिटल नहीं आई थी, आयु ने सिर पकड़कर कहा। उसकी हालत रोने जैसी हो गई थी।
तो क्या कल रात तुम घर पर भी नहीं थी? कहाँ थी तुम पूरी रात? अयान ने हैरानी से पूछा। जहन्नुम में थी और आई विश वहीं पर ही रह जाती, आयु ने चिढ़कर जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वो वहां बैठकर रुद्र से क्या बोलना है इस बारे में सोचने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ अयान का मूड इस वक्त अलग ही हो गया था। जब उसने ये सुना था कि आयु कल रात घर भी नहीं गई थी, वो और ज्यादा परेशान हो गया। कुछ तो पकराए तुम्हारे दिमाग में छिपकली, और मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आई डोंट नो तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन को आरव ने मारा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मॉम के धोखे के बाद वो किसी और लड़की का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खासकर उसका तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके लिए उनके दिल में जगह बनने लगी है। अयान के चेहरे पर आरव के लिए परेशानी के भाव थे। दोनों भाई भले ही साथ नहीं रहते थे और ना ही एक दूसरे की बनती थी, पर अयान आरव को काफी अच्छे से समझता था। नो नो, मुझे कुछ भी करके इन दोनों को पास आने से रोकना होगा, दोनों के दोनों ही आग हैं और एक साथ मिले तो ब्लास्ट हो जाएगा। सोचो, आयु अगर आरव के पास आई और उनके दिल में आयु के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, ऐसे में आयु ने बदला लेने की सोची तो सब सच पता चलने पर आरव उसे तबाह कर देंगे। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में अच्छा सोचोगी या बुरा, लेकिन अब मुझे ये करना ही होगा, बोलते हुए अयान के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। वो आरव और आयु दोनों को ही एक दूसरे से बचना चाहता था। उसने किसी को कॉल किया और धीमी आवाज में कहा, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? सामने से कोई आवाज नहीं आई तो अयान ने फिर कहा, बात बहुत जरूरी है और आयु से रिलेटेड है। ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। सामने से एक आदमी की आवाज आई और कॉल कट हो गया। मैं अच्छे से जानता हूँ छिपकली, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए गलत होगा, पर तुम बाद में समझ जाओगी कि ये तुम्हारे लिए सही है, अयान ने खुद से कहा और फिर अपने कामों में लग गया।